एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने कह सकते हैं 20वीं सदी के दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। लुडविग विटगेंस्टीन की फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस।
हाँ, ये कोई मतलब सीधी सादी किताब नहीं है, पर इसकी जो आइडियाज हैं वो आज भी, बल्कि शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं।
बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार इतनी जानकारी, इतने शब्दों, इतनी बहसों से घिरे रहते ना।
सही बात है। तो ये किताब हमें समझने में मदद करती है कि भाई ये भाषा असल में काम कैसे करती है, इसका हमारी सोच से, हमारी दुनिया से क्या लेना देना है।
हाँ, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये इस चीज की पड़ताल है कि कैसे शब्द हमें उलझा भी सकते हैं और कैसे हम उन उलझनों से शायद बाहर निकल सकते हैं।
तो चलिए पहले इस अनोखे विचारक लुडविग विटगेंस्टीन से थोड़ा मिलते हैं।
जरूर। विटगेंस्टीन, जिनका समय था 1889 से 1951, वो एक ऑस्ट्रिया आई ब्रिटिश दार्शनिक थे और उनकी कहानी भी उनके दर्शन जितनी ही कह लीजिए दिलचस्प है।
हाँ, सुना है बहुत ही अमीर परिवार से थे, पहले इंजीनियरिंग पढ़ी लेकिन फिर फिलॉसफी की तरफ आ गए।
बिल्कुल, और उनकी सबसे अनोखी बात शायद ये है कि ये जो किताब है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये उनकी ही एक पिछली बहुत मशहूर किताब थी, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस।
हाँ, ट्रैक्टेटस।
उसके कई विचारों को ये किताब खुद ही नकारती है, मतलब खंडन करती है।
अरे वाह, ऐसा तो बहुत कम होता है कि कोई थिंकर अपने ही काम पर इतनी ईमानदारी से सवाल उठाए।
सही कहा। ट्रैक्टेटस में उन्होंने भाषा का एक बहुत ही सख्त लॉजिकल मॉडल दिया था कि भाषा दुनिया की तस्वीरें बनाती है, पिक्चर थ्योरी जिसे कहते हैं।
अच्छा,
लेकिन बाद में उन्हें खुद ही लगा कि ये नजरिया बहुत सीमित है, शायद गलत भी है।
और फिर उन्होंने वो सब भी किया ना, स्कूल टीचर का काम, माली का, अस्पताल में सहायक का।
हाँ, और शायद यही जो प्रैक्टिकल अनुभव थे, जमीनी अनुभव, इन्होंने उन्हें भाषा के असली इस्तेमाल को, मतलब थ्योरी से हटकर, समझने में बहुत मदद की।
ये बात तो है, मतलब वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के सोचने वाले फिलोसोफर नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनकी ये बात की किताब इन्वेस्टिगेशंस, जो उनकी मृत्यु के बाद छपी, वो इसी जमीनी समझ को दिखाती है।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में? आपने कहा ये पारंपरिक फिलॉसफी बुक नहीं है जो बड़े सवालों के सीधे जवाब दे।
हाँ, मतलब विटगेंस्टीन का मानना था कि जो ज्यादातर दार्शनिक समस्याएं हैं ना, वो असल में भाषा के गलत इस्तेमाल से या उसे ठीक से ना समझने से पैदा हुई गांठें हैं।
भाषा की गांठें, दिलचस्प।
हाँ, वो कहते हैं कि भाषा हमारी बुद्धि पर एक तरह का जादू या सम्मोहन, बिविचमेंट कर सकती है। तो इस किताब का मकसद एक तरह से इलाज करना है, थेरेपी जैसा।
अच्छा, भाषा की उलझनों का इलाज।
बिल्कुल, हमें उन उलझनों से बाहर निकालना ताकि हम ज्यादा साफ तरीके से सोच सकें।
तो फिर इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? वो सबसे जरूरी बात क्या है जो वो कहना चाह रहे हैं?
शायद सबसे क्रांतिकारी विचार यही है, किसी शब्द का अर्थ उसके उपयोग में है। मीनिंग इज यूज।
मीनिंग इज यूज,
मतलब
ये कि किसी शब्द का अर्थ उस चीज में नहीं है जिसका वो नाम है। जैसे कुर्सी का मतलब सिर्फ वो चीज नहीं जिस पर बैठते हैं,
अच्छा,
बल्कि उसका अर्थ इस बात में है कि हम उस शब्द के साथ करते क्या हैं। अलग अलग सिचुएशन में हम पूछते हैं, आदेश देते हैं, मजाक करते हैं, वर्णन करते हैं, ये सब उसके उपयोग हैं।
ओके, तो भाषा सिर्फ चीजों को लेबल नहीं लगाती।
नहीं, इसे समझने के लिए वो भाषा को एक टूलबॉक्स, मतलब औजारों के बक्से की तरह देखने को कहते हैं।
टूलबॉक्स।
हाँ, जैसे बक्से में हथौड़ा है, पेचकस है, आरी है, सबका अलग अलग काम है ना।
हाँ बिल्कुल, चाहे हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये सवाल ही भाषा की वजह से तो नहीं उलझ गए हैं।
अच्छा, मतलब सवाल पूछने का तरीका ही गड़बड़ हो सकता है।
हाँ, वो हमें शब्दों का उनके असली घर, यानी उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल में वापस लाने हो कहते हैं, ताकि ये दार्शनिक भ्रम दूर हों।
ये तो काफी अलग नजरिया है, और इसमें वो कुछ खास कॉन्सेप्ट्स भी लाते हैं ना, जैसे लैंग्वेज गेम्स।
हाँ, लैंग्वेज गेम्स, फैमिली रिजेम्बलेंस और प्राइवेट लैंग्वेज की आलोचना, ये कुछ बड़े आइडियाज हैं। चलिए अब इनमें से कुछ पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
जरूर, शुरुआत करते हैं ऑगस्टीन वाले पॉइंट से। विटगेंस्टाइन किताब की शुरुआत में सेंट ऑगस्टीन का जिक्र करते हैं कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं।
हाँ, ऑगस्टीन बताते हैं कि बच्चे बड़ों को चीजों की तरफ इशारा करते हुए और उनके नाम बोलते हुए देखते हैं और ऐसे सीखते हैं।
तो विटकिंस्टीन को इसमें क्या दिक्कत लगती है?
वो कहते हैं कि ये जो तस्वीर है जिसे वो ऑगस्टीनियन पिक्चर कहते हैं, ये बहुत अधूरी है। ये मान लेती है कि भाषा का मेन काम बस चीजों पर लेबल चिपकाना है।
अच्छा,
तो वो क्या कहते हैं?
इसे चैलेंज करने के लिए वो एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं, बिल्डर्स लैंग्वेज गेम कहते हैं उसे।
बिल्डर्स लैंग्वेज गेम मतलब?
सोचिए, दो मजदूर है, वो सिर्फ चार शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक, पिलर, स्लैब, बीम। एक चिल्लाता है स्लैब,
हाँ,
दूसरा उसे एक स्लैब उठा के दे देता है। अब यहां स्लैब सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है,
ये तो एक ऑर्डर जैसा हुआ ना।
एग्जैक्टली, ये एक आदेश है, एक एक्शन का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ नामकरण नहीं है, ये एक गतिविधि है, एक काम है।
यहीं से वो मीनिंग इज यूज्ड वाली बात और साफ हो जाती है। बिल्कुल, शब्द का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि उस खास खेल में, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है।
ये भाषा को बहुत डायनामिक बना देता है, स्टैटिक नहीं।
सही। अब एक और बड़े विचार पर आते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस, पारिवारिक समानता।
हाँ, ये भी सुना है, इसका क्या मतलब है?
देखिए, फिलोसोफर्स में अक्सर ये आदत होती है कि वो हर चीज का एक सार एसेंस खोजना चाहते हैं। मतलब वो एक चीज जो उस कैटेगरी की हर चीज में कॉमन हो, जैसे न्याय का सार क्या है।
हाँ, एक परफेक्ट डेफिनेशन की तलाश।
विटकिंस्टीन इसके लिए खेल, गेम शब्द का उदाहरण देते हैं। सोचिए जरा, ताश के खेल, फुटबॉल, चेस, बच्चों का पकड़म पकड़ाई, इन सब में ऐसी कौन सी एक चीज है जो सब में कॉमन है? क्या सब में नियम होते हैं? जरूरी नहीं। क्या सब में मजा आता है? जरूरी नहीं। मुकाबला? जरूरी नहीं।
बात तो सही है, कोई एक चीज तो शायद नहीं है जो सब में हो।
विटगेंस्टीन यही कहते हैं कि इन खेलों में कोई एक समान धागा नहीं है, बल्कि समानताओं का एक उलझा हुआ नेटवर्क है।
नेटवर्क जैसे?
जैसे एक परिवार के सदस्यों में होता है, किसी की नाक मिलती है, किसी की आंखें, किसी की चाल। कोई एक फीचर सब में कॉमन नहीं होता, फिर भी हम उन्हें एक परिवार का मानते हैं। इसी को वो फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा हर चीज की एक सटीक, टाइट परिभाषा खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हाँ, या कम से कम ये समझना चाहिए कि बहुत सारी हमारी अवधारणाएं, हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही लचीले होते हैं, उनमें फैमिली रिजेम्बलेंस होता है, कोई हार्ड कोर सार नहीं।
तो एक्स क्या है ये पूछने के बजाय हमें क्या पूछना चाहिए?
शायद ये पूछना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि हम एक्स शब्द का इस्तेमाल किन किन तरीकों से और किन संदर्भों में करते हैं। ये हमें उस सार खोजने की जिद से मुक्त करता है।
ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब एक और मुश्किल सवाल पर आते हैं, रूल फॉलोइंग, नियम का पालन करना।
हाँ, ये भी बड़ा गहरा सवाल है।
हम नियमों को सही ढंग से फॉलो करना सीखते कैसे हैं? मान लीजिए किसी को प्लस टू जोड़ना सिखाया, वो 2, 4, 6, 998, 1000 तक सही लिखता है। हम कैसे मान लेते हैं, या वो कैसे जानता है कि अगला नंबर 1002 होगा, 1004 या कुछ और नहीं? क्या गारंटी है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारे दिमाग में उस नियम प्लस टू की कोई एकदम सटीक, क्रिस्टल क्लियर व्याख्या होती है जिसे हम फॉलो करते हैं?
शायद।
विटगेंस्टीन कहते हैं कि दिक्कत यह है कि कोई भी नियम अपने आप में अनगिनत तरीके से समझा जा सकता है।
हाँ, आप प्लस टू का मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि 1000 तक प्लस टू करो, उसके बाद प्लस फोर करो।
अरे
हाँ, ये तो सोचा ही नहीं।
तो अगर हम कहें कि नियम को समझने के लिए एक और नियम यानी उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो फिर उस व्याख्या को समझने के लिए एक और नियम, ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा।
तो फिर हल क्या है? हम नियम कैसे फॉलो करते हैं फिर?
विटगेंस्टीन का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि नियम का पालन करना कोई प्राइवेट दिमागी प्रोसेस नहीं है।
तो फिर क्या है?
बल्कि ये एक सामाजिक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस, एक कस्टम, एक रीति, एक तकनीक है।
सामाजिक अभ्यास
मतलब हमें समाज में एक खास तरीके से काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। हम इस बात पर सहमत होते हैं या हमें सिखाया जाता है कि प्लस टू का मतलब है अगला सम अंक जोड़ो। ये हमारी शेयर्ड समझ, हमारा साझा व्यवहार है जो नियम को अर्थ देता है।
तो समझना भी कोई दिमागी घटना नहीं है?
उनके अनुसार समझना कोई मिस्टीरियस दिमागी प्रोसेस नहीं, बल्कि कुछ कर पाने की क्षमता है, एबिलिटी टू डू समथिंग।
वाह, यानी हमारी समझ भी अकेले में नहीं पनपती, वो भी सामाजिक है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका शायद सबसे फेमस तर्क, प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट। निजी भाषा का तर्क।
हाँ, ये तो बहुत सुना है। क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सके, जो उसकी एकदम निजी अनुभूतियों जैसे किसी खास तरह के दर्द या सेंसेशन के बारे में हो?
विट्गेंस्टीन का सीधा जवाब है नहीं, ऐसी पूरी तरह से प्राइवेट भाषा असंभव है।
असंभव? क्यों? मैं अपनी डायरी में अपने किसी खास मूड के लिए कोई कोडवर्ड बना लूं तो?
सवाल ये है कि उस कोडवर्ड का अर्थ कैसे तय होगा। मान लीजिए आप अपनी किसी अनोखी सनसनी के लिए एस लिखते हैं,
ठीक है,
अगली बार जब आपको वो सनसनी महसूस हो, आप कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये वही एस वाली सनसनी है? सिर्फ आपकी याददाश्त के भरोसे?
हाँ, अपनी याददाश्त पर।
लेकिन याददाश्त तो धोखा दे सकती है। यहाँ कोई बाहरी तरीका नहीं है ये चेक करने का कि आपका एस का इस्तेमाल सही है या गलत। यहाँ सही लगना और सही होना में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है, और जहाँ सही गलत का पैमाना ही ना हो, वहाँ अर्थ की बात करना ही मुश्किल है।
ये बात तो है। तो फिर वो बीटल इन द बॉक्स वाली मिसाल इसी को समझाने के लिए है?
हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि कल्पना करें कि हर किसी के पास एक डिब्बा है, और उस डिब्बे में कुछ है जिसे हर कोई भौंवरा कहता है।
ठीक।
लेकिन कोई भी किसी दूसरे का डिब्बा खोलकर नहीं देख सकता, सब सिर्फ अपना ही डिब्बा देख सकते हैं।
ओके।
अब लोग भौंवरा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं बातचीत में, लेकिन ये शब्द डिब्बे के अंदर क्या है उसका नाम नहीं हो सकता।
क्यों?
क्योंकि हो सकता है सबके डिब्बे में अलग अलग चीजें हों, या किसी का डिब्बा खाली ही हो। जो चीज डिब्बे के अंदर है वो भाषा के इस खेल के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाती है। शब्द का इस्तेमाल तो चल रहा है पर वो अंदर की चीज को रेफर नहीं कर रहा।
बाप रे, तो इसका मतलब दर्द जैसे शब्द भी मेरे अंदर की किसी निजी चीज से अपना अर्थ नहीं लेते?
विट्गेंस्टाइन के तर्क के अनुसार नहीं। दर्द शब्द का अर्थ उस सार्वजनिक भाषा खेल से आता है जिसमें हम कुछ खास व्यवहार करते हैं, रोते हैं, कराहते हैं, मदद मांगते हैं,
और दूसरे लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं।
बिल्कुल, ये साझा व्यवहार और प्रतिक्रियाएं ही दर्द जैसे शब्दों को अर्थ देती हैं, न कि कोई अंदरूनी प्राइवेट चीज जिसे कोई और देख ही नहीं सकता।
ये तो मन के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड में वाकई क्रांति है। ये तो हमारे आंतरिक संसार की पूरी धारणा को ही चुनौती दे रहा है।
हाँ, कि हमारा मन कोई बंद कमरा नहीं है जिसकी चाबी सिर्फ हमारे पास हो।
किताब के दूसरे हिस्से में वो सीइंग एज, जैसा देखना की बात भी करते हैं ना, वो बत्तख खरगोश वाली तस्वीर का उदाहरण देकर।
हाँ, डक रैबिट इल्यूजन। तस्वीर वही रहती है फिजिकली, पर हम उसे कभी बत्तख के रूप में देखते हैं, कभी खरगोश के रूप में। हमारी धारणा, परसेप्शन बदल जाती है।
ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि देखना सिर्फ आंखों से रोशनी लेना भर नहीं है। हम चीजों को अपनी अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स और भाषा के चश्मे से देखते हैं। हमारी धारणा पैसिव नहीं, एक्टिव है। हम दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं।
तो इतने सारे गहरे विचारों के बाद अगर हमें कुछ मुख्य संदेश याद रखने हो तो वो क्या होंगे, और क्या कुछ यादगार कोट्स या आइडियाज हैं इस किताब के?
हाँ बिल्कुल हैं। पहला और सबसे बुनियादी संदेश तो वही है जो शायद सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, किसी शब्द का अर्थ भाषा में उसका उपयोग है।
43,
मीनिंग इज यूज।
इसे तो गांठ बांध लेना चाहिए।
सही, मतलब डिक्शनरी में नहीं, एक्शन में है। दूसरा अहम विचार है लैंग्वेज गेम्स और फॉर्म्स ऑफ लाइफ का।
हाँ, इसका जिक्र हुआ था
कि भाषा कोई एक बड़ी मशीन नहीं बल्कि कई छोटे बड़े खेलों का कलेक्शन है, और ये खेल हमारे जीने के तरीके, फॉर्म्स ऑफ लाइफ में गुंथे हुए हैं। जैसे किसी समुदाय में माफी मांगने का तरीका या वादा करने का तरीका, ये सब लैंग्वेज गेम है जो उस समुदाय के जीवन का हिस्सा है।
अच्छा, और वो शेर वाला कोट?
हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। अगर शेर बोल सकता तो हम उसे समझ नहीं पाते।
भाग टू।
क्योंकि शेर का फॉर्म ऑफ लाइफ, उसकी दुनिया, उसका अनुभव हमसे इतना ज्यादा अलग है कि अगर वो बोलता भी तो उसके शब्दों का हमारी दुनिया में, हमारे लैंग्वेज गेम्स में कोई मतलब नहीं बैठता। समझ के लिए एक साझा दुनिया, एक साझा संदर्भ जरूरी है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और फिलॉसफी के काम के बारे में उनका क्या कहना था?
वो कहते हैं दर्शन भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि के सम्मोहन के खिलाफ एक लड़ाई है। पैरा 109, मतलब फिलॉसफी का काम नई नई थ्योरी बनाना नहीं बल्कि भाषा ने जो हमें उलझा दिया है उस सम्मोहन को तोड़ना है।
अच्छा, उलझन सुलझाना।
हाँ, एक और जगह वो कहते हैं कि फिलॉसफर का काम है मक्खी को बॉटल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। पैरा 309, मक्खी बॉटल में फंसी है, भिनभिना रही है, बाहर निकलना चाहती है पर रास्ता नहीं दिख रहा। फिलॉसफर उसे रास्ता दिखाता है, यानी वैचारिक उलझन से स्पष्टता की ओर ले जाता है।
ये तो बहुत अच्छा मेटाफर है। और प्राइवेट लैंग्वेज वाले तर्क का सार क्या था?
हमारा तथाकथित आंतरिक जीवन भी सार्वजनिक भाषा पर साझा समझ पर टिका है।
ये सारे विचार तो सच में हमें भाषा और सोच के बारे में बिल्कुल नए ढंग से सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों का क्या काम? क्या इनसे कुछ प्रैक्टिकल फायदा भी हो सकता
है? मुझे तो लगता है काफी हो सकता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बेहतर करने में।
कैसे?
जब किसी से बहस हो रही हो, मान लीजिए निष्पक्षता शब्द पर या सम्मान शब्द पर, तो ये बहस करने के बजाय कि सही निष्पक्षता क्या है, ये पूछना ज्यादा काम आ सकता है। जब आप निष्पक्ष कह रहे हैं तो आपका मतलब क्या है, आप इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ कैसे कर रहे हैं?
हाँ, ये फोकस डेफिनेशन से हटाकर इस्तेमाल पर ले आता है।
बिल्कुल। इसे अक्सर पता चलता है कि हम शायद अलग अलग लैंग्वेज गेम खेल रहे थे, गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
ये तो बहुत उपयोगी है। और क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे मदद मिलेगी? आजकल इसकी बहुत बात होती है।
जब हम मीडिया में या नेताओं के भाषणों में बड़े बड़े अमूर्त शब्द सुनते हैं, विकास, राष्ट्रहित, आजादी, परंपरा, प्राकृतिक,
हाँ सुनते हैं,
तो हम विट्गेंस्टीन की तरह रुक कर पूछ सकते हैं, अच्छा यहाँ कौन सा भाषा खेल खेला जा रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल करके क्या कहने की या क्या करवाने की कोशिश हो रही है। ये हमें सिर्फ शब्दों के बहाव में बहने से रोकता है।
ये तो बातों की तह तक जाने में मदद कर सकता है। और समस्या को समझने के बारे में वो फैमिली रिजेम्बलेंस वाला आइडिया?
हाँ, वो भी। जैसे कोई जटिल समस्या है, मान लीजिए हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या, तो उसका कोई एक मूल कारण या सार खोजने के बजाय ये आइडिया हमें उससे जुड़े कई फैक्टर्स, शिक्षा, स्किल, इकोनॉमी, सामाजिक ढांचा, इनके पूरे नेटवर्क को देखने में मदद करता है। चीजें अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं, किसी एक चाबी से सारा ताला नहीं खुलता।
तो समाधान भी ज्यादा हिस्सों को देखकर बनाना होगा
शायद। हाँ, ज्यादा समग्र होलिस्टिक अप्रोच।
ये सब सुनने के बाद इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे अहम सीख?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह एहसास है कि भाषा सिर्फ हमारे विचारों को बताने का एक जरिया भर नहीं है, भाषा हमारी सोच को, हमारी दुनिया को बनाती भी है, आकार देती है।
हाँ, ये तो है।
और भाषा की जो गांठें हैं, जो उलझने हैं, उन्हें सुलझाकर हम असल में अपनी सोच को ज्यादा साफ कर सकते हैं। विट्गेंस्टीन ने एक तरह से फिलॉसफी को बहुत प्रैक्टिकल थेरेप्यूटिक काम बना दिया।
और मेरे लिए सच कहूं तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो प्राइवेट लैंग्वेज वाली थी। ये सोचना कि मेरा जो अंदरूनी एहसास है, मेरी जो फीलिंग है, वो भी बिना सार्वजनिक भाषा के, बिना दूसरों के साथ एक समझ के बेमानी हो सकती है, ये हमारी मैं की पूरी धारणा को हिला देता है।
हाँ, ये गहरा असर डालता है।
और ये भी कि फिलॉसफी का काम हमेशा जवाब देना नहीं, बल्कि कई बार सवालों को ही भंग कर देना, उन्हें डिसॉल्व कर देना हो सकता है। ये भी काफी रेडिकल लगा।
बिल्कुल। तो अंत में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस हमें कोई रेडीमेड जवाबों की लिस्ट नहीं देती।
नहीं देती,
पर ये हमें सोचने का एक बहुत शक्तिशाली औजार देती है।
हाँ,
एक तरीका सिखाती है कि कैसे हम भाषा के जाल में फंसने से बच सकते हैं और दुनिया को और खुद को शायद थोड़ी ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं।
बिल्कुल, एक जरूरी किताब जिस पर सोचते रहना चाहिए।
हाँ,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।